नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार प्रेम प्रकाश। नमस्कार प्रेम जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
नमस्कार प्रियंका।
आगे बढ़े उससे पहले अब तक की लेटेस्ट हेडलाइंस जान लेते हैं। आईपीएल T20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। कल रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 11 रन से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने सेपक टाकरा विश्व कप के नियमित संवर्ग में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री ने बधाई दी। सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन में कांस्य पदक हासिल किया। फुटबॉल में भारत और बांग्लादेश के बीच 2027 एएफसी एशियाई कप क्वालिफाइंग के तीसरे दौर का मुकाबला गोल रहित ड्रॉ रहा। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स में आज खिलाड़ियों ने पावर लिफ्टिंग और टेबल टेनिस में दमखम दिखाया। तो शुरुआत क्रिकेट के मैदान से करते हैं। आईपीएल T20 क्रिकेट में इस समय गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 11 ओवर में 5 विकेट पर 82 रन बना लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। देखा जाए तो दोनों टीमें अभी तक अपना पहला जो मुकाबला था हार गई थी और खाता खुलना दोनों का ही तय है, लेकिन पिछली बार कोलकाता नाइट राइडर्स की न गेंदबाजी चली न बल्लेबाजी, पर जैसी शुरुआत आज की है गेंदबाजी में, मतलब 5 विकेट गिरा दिए है राजस्थान रॉयल्स के। तो
प्रियंका, एक्चुअली क्रिकेट गेम ही ऐसा है जिसमें बहुत, हम कहते हैं हमेशा से, कि अनिश्चितताओं का खेल है। और ये जो आईपीएल एक जो इवेंट है, वहाँ स्पोर्ट्स भी है, वहाँ एंटरटेनमेंट भी है, तो मतलब हमारे कंट्री के हिसाब से कहा जाए तो बहुत बड़ी लीग है। और जहां तक बात है मैच की, इस संस्करण के, आईपीएल के इस संस्करण के शुरुआत में ही जितने मैच अभी तक हुए हैं वो हम देख सकते हैं कि बहुत हाई स्कोरिंग मैचेज हुए हैं। राजस्थान भी हार गई है अपने पहले मैच में, लेकिन बहुत अच्छा स्कोरिंग मैच हुआ। मतलब हैदराबाद ने भी जो स्कोर बनाया उससे बहुत जीतने के कगार पे लगभग पहुंच गए थे। तो हम और आज का मैच हम देखें कि आज अभी, जैसे मैं बता दूं कि 12.3 ओवर में 87 रन हो गए हैं इनके और 5 विकेट चले गए हैं। तो एक वो मैच था जहां आप चेज करते हुए इतना हाई स्कोर पे पहुंच गए, और एक ये मैच है। तो दोनों टीमों के लिए एक जद्दोजहद ये भी है कि उनका जीत का खाता खुलना बाकी है। तो मैच काफी अच्छा होने की संभावना इसलिए कही जा सकती है कि हो सकता है कि जो गेंदबाजी इनकी चल रही है, पिच का एक जो मिजाज है, वो राजस्थान रॉयल्स के लिए भी कहीं कहीं सपोर्टिव हो, तो बहुत अच्छा मैच होगा। अदरवाइज तो जिस तरीके के शुरुआत के एक दो हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले हैं, उस हिसाब से देखें तो फिर बहुत लो स्कोरिंग मैच हो सकता है ये।
क्योंकि देखिए यशस्वी जायसवाल भी 29 रन बनाकर आउट हो गए, हालांकि पिछली बार भी वो 1 रन बनाकर ही आउट हो गए थे, लेकिन संजू सैमसन से बहुत उम्मीदें थी जो 66 रन की पारी पिछली बार खेली थी और आज सिर्फ 13 रन पर सिमट गए।
बिल्कुल, दोनों ही बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी हैं ये हम लोग कह सकते हैं, लेकिन पता नहीं आईपीएल जैसे ही शुरू होता है, यशस्वी जायसवाल के साथ हमेशा कुछ ना कुछ इस तरीके का होता है कि 5 मैचेस में एक दो मैचेस में बहुत अच्छा वो करते हैं। संजू सैमसन नो डाउट शुरू से काफी अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, लेकिन कभी कभी, मैं हमेशा स्पोर्ट्स में कहता हूं कि हर खिलाड़ी का हर दिन नहीं होता है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है।
और इस बार जो कोलकाता नाइट राइडर्स ने सुनील नारायण की जगह मोइन अली को प्लेइंग 11 में शामिल किया और उन्होंने अभी विकेट भी लिया है। और इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स ने फजाल हक फारूकी की जगह वनिंदु हसरंगा को टीम में शामिल किया है आज की टीम में। तो आगे बढ़ते हैं कल के मैच की अगर बात करें प्रेम जी, तो कल पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 11 रन से हरा दिया। पंजाब किंग्स के 244 रन के लक्ष्य के जवाब में गुजरात टाइटंस निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 232 रन ही बना सकी। गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन ने 74 रन की पारी खेली, जबकि जोस बटलर ने 54 रन और शेफिन रदरफोर्ड ने 46 रन बनाए। पंजाब किंग्स के लिए अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए, जबकि मार्को जेनसन और ग्लेन मैक्सवेल ने 1-1 विकेट लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 243 रन बनाए। पंजाब किंग्स के श्रेयस अय्यर ने नाबाद 97 रन की शानदार पाली खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो बहुत ही श्रेयस का देखा जाए तो बहुत बड़ा योगदान रहा टीम को।
निश्चित रूप से श्रेयस अय्यर का इस बार काफी अच्छा रहा भी है, और जिस तरीके से अभी टीम जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आई है, वहां भी उनका काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो एक बड़ा उनके देश के लिए खेलने का एक अनुभव है, और उसी हिसाब से जो है अभी वो कैप्टेंसी कर रहे हैं पंजाब की। तो कल का भी मैच अगर हम देखें तो बहुत हाई स्कोरिंग रहा, दोनों टीमें बहुत बढ़िया खेली। इनफैक्ट हम लोग जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि एक टीम ने मैच जीता और दूसरे ने दिल जीता, तो कल का मैच भी उसी तरीके से हुआ।
क्योंकि वहां पे कल देखा जाए तो हर गेंद पर खेल का रुख बदल रहा था, और जैसे पंजाब के गेंदबाजों ने जो अंतिम क्षणों में शानदार प्रदर्शन किया, तो और गुजरात टाइटंस कहते हैं ना कि मुंह से जीत।
बिल्कुल बिल्कुल, ये इस संस्करण का मतलब आईपीएल का जो ये एडिशन है इसका मैं हमेशा से इसलिए फैन रहा हूं क्योंकि ये बहुत सारे नए खिलाड़ियों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है, और जिस तरीके से नए नए खिलाड़ी हर संस्करण में एक दो ऐसे प्लेयर्स निकलते हैं जो कहीं कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं या फिर उस लेवल के प्रतिभावान खिलाड़ी होते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है ये। अभी तो शुरुआत है इस संस्करण की, देखते हैं आगे आने वाले मैचेज में बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा।
और कल हैदराबाद में लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। बढ़ते हैं सेपक टाकरा विश्व कप की ओर, जहां भारतीय पुरुष टीम ने आईएसटीएफ सेपक टाकरा विश्व कप के नियमित संवर्ग में जापान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित इस खेल के कल अंतिम दिन महिला वर्ग में भारतीय टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। महिला वर्ग में थाईलैंड की टीम ने स्वर्ण पदक जीता जबकि वियतनाम को रजत पदक मिला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पुरुषों की रेगू टीम ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। देखा जाए प्रेम जी, तो पिछले विश्व कप की तुलना में भारत की पुरुष और महिला टीम का प्रदर्शन शानदार रहा, क्योंकि पिछले विश्व कप में हमने 5 पदक जीते थे और इस बार 7।
निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री जी नहीं पूरे देश की तरफ से चाहता हूं कि हमारी टीम को बधाई मिले, क्योंकि सेपक टकरा एक ऐसा गेम है, मैं बता दूं मैं खुद भी एक एथलीट हूं और एक फुटबॉल में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। 2016 में वियतनाम में हम लोग बीच एशियन बीच गेम्स खेलने गए, वहां सेपक टकरा की भी टीम थी और उस दौरान तक देखने तक कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमारी टीम ऐसी हो सकती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये गेम बेसिकली जो हमारे दूसरे एशियन कंट्रीज है जैसे चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, वियतनाम और जापान ने जिस टीम को अभी हरा के वर्ल्ड कप जीता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों की जिस लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी होती है जैसा वहां का एक एनवायरमेंट है उसके हिसाब से, तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारी टीम अगर वर्ल्ड कप जीतती है तो बहुत बड़ी बात है। और 2016 तक इस तरीके की स्थिति नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि पिछले 8-10 साल में जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पोर्ट्स के लिए इतना काम किया और एक जो नई खेल संस्कृति विकसित हुई है इसका एक बहुत बड़ा योगदान है कि 2018 के जकार्ता में जो एशियन गेम्स हुए उनमें हमारी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और वहां से लोगों ने जानना शुरू किया कि सेपक टकरा क्या है बेसिकली। तो आज हम इस लेवल पे है कि वर्ल्ड कप आयोजन भी करवा सकते हैं और हम जो है जीते भी हैं, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के साथ साथ पूरे देश की हमारी टीम को बधाइयां।
और अब बात कुश्ती के रिंग में चलते हैं, जहां भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने जॉर्डन में एशियाई चैंपियनशिप के 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन कुश्ती में कांस्य पदक हासिल किया है। सेमीफाइनल में हारने के बाद कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में सुनील ने चीन के हुआंग को 5-1 से शिकस्त दी। इससे पहले सुनील ने क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के सुखरोब अब्दुल खाइफ को 10-1 से हराया था। वहीं भारत के सागर ठाकरा ने 77 किलोग्राम भार वर्ग के क्वालिफाइंग मुकाबले में जीत हासिल की, लेकिन वे क्वार्टर फाइनल में जॉर्डन के सादी से 10-0 से हार गए। सुनील ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का देखा जाए तो खाता खोल दिया है और इस चैंपियनशिप में ये उनका 5वां पदक है अगर पिछले देखे जाए तो उनका इतिहास।
देखिए पिछले कुछ टाइम से अगर हम मैं कुश्ती की ही नहीं किसी भी गेम की बात करूं तो पहले हमेशा ये होता था कि एक ही खिलाड़ी बहुत लंबे टाइम तक चलता था क्योंकि हमारे यहाँ खेल इतना मजबूत नहीं था कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत हो, तो एक खिलाड़ी लंबे टाइम तक चलता रहता था। अभी स्थितियां ये हो गई है कि इतनी सारी प्रतिभाएं हैं, जिस तरीके से खेलो इंडिया हो रहे हैं या फिट इंडिया की हम बात करें या डिफरेंट जो एडिशंस स्पोर्ट्स के शुरू हुए हैं, तो इन सारे गेम्स को एक ऐसा बूम मिला है जहां हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग है। आज जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत रहा है हो सकता है कि कल को एक नई प्रतिभा निकल के आए, तो सुनील कुमार जी इसी तरीके की एक प्रतिभा है और जिस तरीके से एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने मेडल जीता है हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाली बड़े इवेंट्स में भी हम लोगों को और गौरवान्वित।
और ऐसे ही जो बड़े बड़े इवेंट्स हमारे देश में हो रहे हैं, खासकर खेलो इंडिया इनिशिएटिव, तो ऐसे ही प्रतिभाओं को और निखार रहा है। और जानते हैं जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स चल रहे हैं उसकी आज की अपडेट क्या है, आइए सुनते हैं रिपोर्ट।
जीत के है इरादे, हम भारत की शान है। पावर लिफ्टिंग में इस बार 4 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने। जसप्रीत कौर ने 45 किलो में, मनीष कुमार ने 54 किलो में, सीमा रानी ने 61 किलो में और झंडू कुमार ने 72 किलो में रिकॉर्ड बनाया। आज पुरुषों की एलिट 107 किलो से अधिक श्रेणी में प्रदीप जून ने स्वर्ण पदक जीता, नदीम ने रजत और श्याम सिंह ने कांस्य पदक जीता। महिलाओं की एलिट 79 किलो में सहिस्ता ने स्वर्ण पदक जीता, गीतिका शर्मा ने रजत और सुनीता ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। पैरा टेबल टेनिस में ऋषित नाथवानी ने अभिषेक कुमार सिंह को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। एक अन्य फाइनल मैच में सुमित सहगल ने जसवंत को हराकर स्वर्ण पदक जीता। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में आई पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी तस्नीम फातिमा ने कहा कि ये आयोजन बहुत शानदार है और खिलाड़ियों के लिए उत्तम व्यवस्था की गई है।
इस बार खेलो इंडिया की जो फैसिलिटीज हैं वो पिछले बार से भी बहुत अच्छी हैं और हमारे जो जर्सी कलर्स हैं वो बहुत कलरफुल हैं। यहाँ पे इंतजाम बहुत अच्छे किए हैं, खाना बहुत अच्छा होता है हर बार, कॉम्पिटिशन टफ होता जा रहा है, लोग और प्रिपरेशन कर रहे हैं। टॉप 8 होने के बाद भी हमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सरकार ये पहल कर रही है।
एक अन्य पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी दीपक कुमार ने कहा कि पैरा गेम्स में प्रतिस्पर्धा और कड़ी हो गई है।
इस टाइम जो थोड़ी फैसिलिटीज और अच्छी हुई है, ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम कुछ कमी थी, जस्ट दैट के और उन्होंने बेटर करने की कोशिश की है। तो एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा है और जहां तक कि मैं कॉम्पिटिशन की बात करूं तो कॉम्पिटिशन आजकल और बढ़ गया है क्योंकि सारे प्लेयर्स को पता लग गया है कि सब लोग बाकी प्लेयर्स भी बहुत सारी प्रैक्टिस करके आते हैं, तो दे आर ऑल्सो टेकिंग इट सीरियसली।
पैरा गेम्स पदक तालिका में हरियाणा पहले स्थान पर है जबकि तमिलनाडु दूसरे और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। अभिषेक कपिल, स्पोर्ट्स कैन।
प्रेम जी, आप खुद फिट इंडिया के एम्बेसडर हैं और आपका अनुभव कैसा रहा, कैसा रहता
जी?
है
जी, बिल्कुल, मैं कल वहां पे था और पिछले जितने भी खेलो इंडिया के इवेंट्स हुए हैं ज्यादातर जो दिल्ली और आसपास में हुए वहां मैं मौजूद रहा हूं फिट इंडिया की तरफ से, साई की तरफ से। कल भी मैं वहां था और कल पैरा गेम्स में पैरा इमोजीज लॉन्च की गई, एक इवेंट थी जिसको जो है बहुत अच्छा आयोजन रहा और वो बेसिकली जो हमारे पैरा एथलीट्स हैं उन पैरा एथलीट्स को न केवल सपोर्ट करने के लिए बल्कि मेन स्ट्रीम में उनका समर्थन करने के लिए, मेन स्ट्रीम में उनको शामिल करने के लिए, जिसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं समावेश की प्रक्रिया, तो उस समावेशन के तहत उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इमोजीज लॉन्च किए गए थे। तो मुझे लगता है कि हर बार की ये जो संस्करण है, ये पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण है खेलो इंडिया का, बेहतर होता जा रहा है।
अब फुटबॉल के मैदान में चलते हैं। फुटबॉल में भारत और बांग्लादेश की टीम ने 2027 एएफसी एशियाई कप क्वालिफाइंग के तीसरे दौर में कल रोमांचक मुकाबले में गोल रहित ड्रॉ खेला। शिलांग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दोनों टीमों की ओर से अंतिम समय तक गोल नहीं हो सका।
नए कोच मनोलो मार्केज तथा संन्यास से लौटे सुनील छेत्री की अगुवाई में मैच खेलने उतरी भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास से भरी थी, लेकिन बांग्लादेश के मजबूत डिफेंस ने भारत की जीत के सपने को चकनाचूर कर दिया। मैच शुरू होते ही 15 सेकंड में बांग्लादेश ने तूफान ला दिया, लेकिन उसे कोई स्पष्ट मौका नहीं मिला। उसने इस दौरान थोड़े अधिक आक्रामक मूव और कॉर्नर किक हासिल किए, लेकिन भारत ने अगले 45 मिनट यानी दूसरे हाफ में काफी बेहतर प्रदर्शन किया। 84वें मिनट में स्टार स्ट्राइकर सुनील छेत्री ने बांग्लादेश के बॉक्स के अंदर एक फ्री हेडर हासिल किया, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो सका। इस मैच में सबकी नजरें सुनील छेत्री और बांग्लादेश के चर्चित खिलाड़ी हमजा चौधरी पर थीं। दोनों ही मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। बहरहाल, इस ड्रॉ ने ग्रुप सी में सभी टीमों को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। भारत, बांग्लादेश, सिंगापुर और हांगकांग सभी के एक एक अंक हैं। अब 10 जून को भारत का सामना हांगकांग से और बांग्लादेश का सामना सिंगापुर से होगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
और इस ड्रॉ के बाद खुद कोच मार्केज ने कहा कि जो भारतीय टीम है 2-3 कदम पीछे चली गई है।
हाँ देखिए, बिल्कुल, हम मैंने पहले भी कहा सुनील छेत्री के बारे में पिछले भी प्रोग्राम में, जैसे वो संन्यास से लौटे हैं, लेकिन हम हर सारी उम्मीद सुनील छेत्री से नहीं कर सकते। गेम है, हर खिलाड़ी का एक दिन होता है,
तो उम्मीद करते हैं कि जो 10 जून को मैच होना है उसमें हम कुछ पॉजिटिव न्यूज दे सकें फुटबॉल के इस गेम में। आगे बढ़ते हैं, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में आज यूकी भांबरी और पुर्तगाल के नूनो बोर्गेज अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगे। सिंगल्स में नोवाक जोकोविच और टेलर फ्रिट्स ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और मुंबई में इंडियन ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट में जोशना चिनप्पा महिला वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। समय कह रहा है आपसे अनुमति ली जाए। प्रेम जी, आप स्टूडियो में चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
धन्यवाद, शुभरात्रि।
श्रोताओं, प्रियंका अरोड़ा स्पोर्ट्स कैन की टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।